तारा परी ने अमन की बात मानकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई थी आराम करने के लिए। वाकई उसके शरीर को आराम की उस समय सख्त जरूरत थी। तारा की नज़र अचानक सामने माली काका की बीवी की ओर गई, जो वहीं बरगद के पेड़ के मोटे तने के पास दफन थी। तारा परी के मन में न जाने क्या आया, वो वहां जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि माली काका की मोहब्बत कितनी प्यारी थी कि अपनी बीवी को ठीक करने के लिए उन्होंने रो रो कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। तारा परी को वहां बैठकर मान का बर्ताव याद आने लगा। आज मान के बर्ताव ने उसे परीलोक के दानव की याद दिला दी थी। तारा परी को आज मान का स्पर्श घृणा से भर गया था और अपने आप ही उसकी आंखें भर आईं, और तारा परी को पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों से कुछ आंसू निकलकर उस पेड़ के तने पर जा गिरे थे। और अचानक एक तूफान सा आना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो तना दो हिस्सों में बट गया, और देखते ही देखते उसके अंदर से एकदम सफ़ेद रंग के पाक साफ लिबास में एक बड़ी ही खूबसूरत औरत वहां आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि माली काका की बीवी नन जिन थी। तारा परी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि माली काका ने जब उसे अपनी बीवी की छवि बताई थी तब तारा परी ने उनकी बताई गई छवि अपने मन में बसा ली थी, इसलिए वो नंजिन को देखते ही पहचान गई। सो तारा परी भागकर उनके गले लग गई और नंजिन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तारा परी नंजिन को देखते ही उनसे जाकर लिपट गई और उन्होंने बड़े ही प्यार से तारा परी के सर पर हाथ फेरा और बोली, तारा परी, आपकी आंखों से निकले हुए पाक साफ आंसुओं ने मेरा श्राप खत्म कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार आपका शुक्रिया अदा करूं। तब तारा परी बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हैं। आपको पता है, माली काका ने जब मुझे आपके और अपने बारे में बताया था, उस दिन मेरा दिल चाहता रहा था कि मैं आपको देख लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज देखो, आप मेरे सामने हैं। मेरी किस्मत ने मुझे आपसे मिलवा दिया है। ऐसा कहकर तारा परी एक बार फिर नंजिन के गले लग गई। तब नंजिन ने कहा, तारा बेटी, अब तुम एक आखिरी एहसान और कर दो मुझ पर। तुम मुझे मेरे शौहर से मिलवा दो, क्योंकि मेरा दिल बहुत बेचैन है उनके बिना। वे पूरे दो दिनों से मेरे पास नहीं आए हैं। बेटा, बस ये आखिरी मदद और कर दो मेरी। तारा परी कहने लगी, लेकिन मालिका का तो यहाँ हर रोज आते हैं, फिर भी क्यों नहीं आए दो दिन से? तब नंजिन बोली, मैं नहीं जानती हूँ तारा बेटी, उन्होंने आज तक एक दिन भी यहाँ आए बिना नहीं छोड़ा है, और वे अब पिछले दो दिनों से नहीं आए हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तब तारा परी मन ही मन सोचने लगी कि मान के बर्ताव के बाद वो खुद अब मान को देखना नहीं चाहती थी, और इस वक्त नंजिन का साथ जाना ही उसके लिए बेहतर तरीका था उन दोनों भाइयों से दूर जाने के लिए। और वैसे भी जब से वो इस पृथ्वी पर आई थी तब से माली काका ने उसकी कितनी मदद की थी, तो अब जाकर उसे मौका मिला था माली काका के कुछ काम आने का, तारा परी ने मन ही मन सोचा। सो तारा परी ने नंजिन की ओर हाँ में सर हिला दिया और वो एक बार फिर उनके गले लग गई, और देखते ही देखते वे दोनों गायब होकर माली काका के घर के सामने पहुंच चुकी थी। वहां जाकर तारा परी ने नंजिन के कपड़े देखे और फिर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके नंजिन को एक बेहद सादा सा लिबास पहना दिया, क्योंकि अगर वो कोई महंगा लिबास पहनती तो वो जरूर लोगों की नज़र में आ जाती, और तारा परी ये नहीं चाहती थी कि वो किसी की भी नज़र में आए। उसके बाद तारा परी ने अपने भीगे कपड़ों को देखा। उसने अभी भी वही हरे रंग के गीले कपड़े पहने हुए थे। तारा परी अब ये सोचकर उदास हो गई कि वो अब क्या करे। वो अपनी शक्ति से किसी और की मदद तो कर सकती थी, लेकिन अपनी नहीं। उसकी परेशानी नंजिन ने दांप ली और उन्होंने कुछ पढ़कर तारा परी के ऊपर फूंका, और देखते ही देखते तारा परी के शरीर पर एक सफ़ेद रंग का लिबास आ गया। लेकिन उस उजले सफ़ेद लिबास के आगे तारा परी की रंगत और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब उन दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और माली काका के घर की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर माली काका बहुत बीमार थे। उनके बेजान पड़े शरीर ने दो दिन से उनका साथ छोड़ दिया था, और ऊपर से उनके बेटे बहू ने उन्हें दो दिनों से खाना भी नहीं दिया था, जिसके कारण उनका शरीर और ज्यादा कमजोर हो गया था। माली काका अब काफी बुजुर्ग हो गए थे। उनके बेटे बहू आज माली काका को किसी ओल्ड एज होम में भेजने के चक्कर में थे, क्योंकि अब माली काका का शरीर पूरी तरह से बेजान हो चुका था और अब माली काका उन्हें बोझ लगने लगे थे। पहले तो माली काका को बगीचे की चौकीदारी के पैसे मिलते थे, उन्हें भी माली काका अपने बेटे बहुओं को दे दिया करते थे, और बदले में उनके बेटे बहू उन्हें रूखी सूखी रोटी दे दिया करते थे। लेकिन अब अचानक उनके यूं बीमार हो जाने पर तो माली काका उन लालची लोगों के लिए किसी भी काम के नहीं थे, और अब वे लोग कुछ ना कुछ करके माली काका से पीछा छुड़ाना चाहते थे, जिसकी उन्होंने आज तैयारी भी कर ली थी। पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि ये बीमार हैं और अगर इन्हें खाना नहीं देंगे तो ये ऐसे ही मर जाएंगे और कोई मोहल्ले पड़ोसी वाला उन पर शक भी नहीं करेगा। ये सोचकर उन्होंने उन्हें खाना नहीं दिया था, और जब खाना ना देने पर भी माली काका की जान नहीं गई तो आज थक हार कर उन्होंने माली काका को ओल्ड एज होम भेजने का इरादा कर लिया था, और उन चारों ने उन्हें एक व्हीलचेयर पर बिठा दिया था। उन्होंने अपने अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर रखा था ताकि वे लोग अपने दादाजी को जाते हुए ना देखें, क्योंकि उनके बच्चे अपने दादा से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था और माली काका को ओल्ड एज होम ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। और अभी वे लोग निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक इस वक्त दरवाजे पर किसी का आना उन्हें बहुत बुरा लगा। तभी माली काका की बड़ी बहू अपने पति से बोली, अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ जाकर दरवाजे पर देखो कौन है, और अगर कोई पड़ोसी हो तो उसे बाहर से बाहर ही चलता कर देना, और ख्याल रहे कोई भी हमें इस बूढ़े को यहाँ से ले जाते हुए ना देखे। उसके पति ने हाँ में सर हिलाया और दरवाजा खोलने चला गया, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अपने सामने इतनी हसीन खूबसूरत औरतों को देखकर वो अपनी पलक झपकनी भूल गया और बेख्याली से तारापरी और नंजिन को देखता रहा। और जब कितनी देर तक वो दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें घूरता रहा, तब तारापरी ने उसे कहा, हम यहाँ माली काका से मिलने आए हैं, क्या वे अंदर हैं? तब वो घबरा गया, उसे समझ नहीं आया कि वो तारापरी की बातों का क्या जवाब दे। तब वो हकलाते हुए बोला, माली काका? अच्छा पिताजी जी, वो तो घर पर ही नहीं है, वे बगीचे में गए हुए हैं। तारापरी उसके इस झूठ पर उसे घूर कर देखने लगी। तभी अचानक नंजिन बोलने लगी, नहीं वे बगीचे में नहीं है, वे यहीं हैं, मुझे उनकी खुशबू आ रही है। ऐसा कहती हुई नंजिन अंदर जाने लगी और तारापरी भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई, और माली काका का बेटा दरवाजे पर खड़ा हुआ उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करता ही रह गया। तभी वे दोनों माली काका के कमरे में पहुंच गईं, और जैसे ही उन्होंने माली काका को देखा वे हैरान रह गईं। तारापरी और नंजिन माली काका एकदम से बहुत बूढ़े और बेजान हो गए थे।
माली काका ने जैसे ही अपने सामने नंजिन को देखा तो उनकी खुशी उनकी आंखों में झलक आई। उन्होंने तो सोचा था कि वे नंजिन से मिले बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन अपने सामने नंजिन को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी रुकती हुई सांसों को एक बार फिर से जीने के लिए सांसें मिल गई हों। तारापरी ने भी माली काका का हाथ पकड़ रखा था और वो सब कुछ जान गई थी कि उनका ये परिवार आज उनका क्या करने जा रहा था। तभी माली काका की एक बहू तारापरी को देखकर आग बबूला हो गई। इसके दो कारण थे, एक तो तारापरी ने आज वहां आकर उनके प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया था, और दूसरा उनके पति जो तारापरी के ही घूर रहे थे, तारापरी की खूबसूरती में अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे, जिसे देखकर माली काका की दोनों बहू आग बबूला हो उठी। तभी एक बहू आगे बढ़ी और उसने तारापरी का हाथ बाजू पर से कसकर पकड़ लिया और उसे माली काका के पास से उठा दिया। तारापरी गुस्से से भर उठी और उसे घूर कर देखने लगी। तब माली काका की बड़ी बहू बोली, हे लड़की, ये सब क्या लगा रखा है तूने? तेरा जब मन करता है तू यहाँ अटपकती है, कभी तू आती है, कभी आधी रात को तेरा वो आशिक यहाँ अटपकता है, आखिर चल क्या रहा है ये? और आज तो तू यहाँ अपने जैसे एक और बेसहारा को यहाँ ले आई है। तूने क्या हमारे घर को खैराती प्लेस समझ रखा है, या फिर तेरा इस बूढ़े को फंसाकर इस घर को हथियाने का इरादा है? हाँ बोल, जवाब दे मुझे, बोल। तारापरी का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया और उसने माली काका की बहू का हाथ झटकते हुए उसे खींचकर एक जोरदार तमाचा मार दिया, जिससे वो माली काका के कमरे के बाहर जाकर गिर गई और उसके नाक और मुंह से खून आना शुरू हो गया। तब उसका पति यानी माली काका का बड़ा बेटा तारापरी के पास आया और बोला, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? ऐसा कहकर उसने भी तारापरी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। तब तारापरी ने उसका वो हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसके भी गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा।